आज का रात्रि क्लास है 1764। इस सर्विस में वास्तव में थकान नहीं होनी चाहिए। क्यों? इस सर्विस में क्या खास बात है? इस माने कौन सी सर्विस? ईश्वरीय सर्विस में थकान नहीं होनी चाहिए। कोई कारण? क्योंकि ये ईश्वर की सेवा है, कोई देहधारी की सेवा नहीं है। और ईश्वर कौन है? आत्माओं का पिता है, वो सदैव आत्मा है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है। तो उसकी सेवा में रहने वाले जो बच्चे हैं, उनकी भी कैसी स्टेज बनेगी? आत्मिक स्टेज बनेगी। आत्मा को थकान होगी? होगी। देह को थकान होती है, क्योंकि ईश्वरीय सर्विस में तो और ही ताकत मिलती है। देहदारियों की सेवा करेंगे, भला राष्ट्रपति की ही कोई सेवा मिले, प्रधानमंत्री के नीचे कोई सेवा मिले, वो सेवा रूहानी होगी या जिस्मानी होगी? रूहानी तो नहीं होगी, जिस्मानी सेवा होगी। और जिस्म में ताकत होती है कि आत्मा में ताकत होती है? है? आत्मा में ताकत होती है। जिस्म तो पांच तत्वों का पुतला है, पांच जड़ तत्व हैं। जड़त्व में ताकत कहां से आई? हर एक कार्य में कमाई तो जरूर है, क्योंकि सभी ऑन गार्डली सर्विस यानी ईश्वर की सर्विस में है। चाहे ईश्वरीय सेवा का कोई कार्य क्यों न हो, आसुरी सर्विस में 8 घंटा तो ईश्वरीय सर्विस में 12 घंटा। क्यों? ईश्वरीय सेवा में ज्यादा टाइम क्यों देना? क्योंकि यहां इजाफा जास्ती मिलता है। बाप बहुत अच्छा इजाफा देते हैं। बाबा से ज्यादा कोई पेमेंट कर ही नहीं सकता। इस जन्म में भी पेमेंट करते हैं और जन्म जन्मांतर के लिए ब्याज में भी देते हैं। इसलिए गाया हुआ है कि दधीचि ऋषि ने हड्डी भी दे दी थी। है? किसने दी? दधीचि। ये दधीचि ऋषि की बात कहां से उठाई? शास्त्रों से। और शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो कहां से उठाई गई? संगमयुग से। तो संगमयुग में दधीचि कौन हुआ? दधी माने क्या? अरे दधीचि शब्द है दधी से बनाना। दधी माने क्या? दधि माने दही, अर्थात दही में सार होता है या छाछ में सार होता है? है दही में मक्खन होता है लेकिन दही जमा हुआ है या लिक्विड है? है शुद्ध दही होगा, शुद्ध दूध का दही होगा तो जाम होगा या ढीला ढीला होगा? जाम होता है। तो दधीचि ऋषि उनकी हड्डियां भी कैसी थी? सॉलिड हड्डियां थी या कमजोर हड्डियां थी? है सॉलिड हड्डियां थी। उन्होंने अपनी हड्डी भी दे दी, हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया। हड्डियों से क्या बनाया गया था? शास्त्रों में आया है कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से क्या बनाया गया? धनुष बनाया गया था। और दधीचि ऋषि की हड्डियों से इंद्र का वज्र भी बनाया गया था। तो देखो हड्डियां हड्डियां ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करना ये कर्म सन्यासी की बात है। हड्डियों से कर्म भी करते रहो और मन बुद्धि से याद भी करते रहो। तुमको कर्मणा करनी है, कर्मेंद्रियों से ही कर्मणा की जाती है। तन मन धन से बहुत सेवा करनी है। अभी सन्यासी क्या करते होंगे, किस प्रकार की सेवा करते होंगे? वो तन की सेवा करते होंगे है? सन्यासियों ने अगर तन की सेवा की होती तो घर बार छोड़ करके क्यों भागते है? भागे तो क्यों भागे? तन की जो सेवा करनी थी, बीवी बाल बच्चों की, वो तन की सेवा छोड़ दी। सन्यासी सर्विस नहीं कर सकेंगे तन की, क्योंकि वो तो सब कोई जाकर के सामने पड़ जाते हैं। भक्त लोग कर्म सन्यासी होने के कारण उनको कुछ कर्म तो करने की दरकार ही नहीं है। जैसे बाकी कहे मन से तो उल्टी आयाथार्थ बातें तो बुद्धि में आती रहती है। भले कर्म इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देते हैं लेकिन मन कंट्रोल होता है। मन के संकल्प कंट्रोल होते हैं नहीं होते? उल्टे सीधे संकल्प चलते रहते हैं, अयथार्थ संकल्प चलते रहते। तो सर्वे से जितनी बच्चे करते हैं, इतनी बच्चे जानते हैं कि हमको ऊंट पर हमको ऊंच पद मिलना है। पीछे मार्स तो सब में है। देखो बाबा भी कहते हैं जैसे भंडारी है तो इतनी सेवा करती है, तो इनकी भी मार्स बहुत है, क्योंकि बहुतों को सुख मिलने से वो सुख की आशीर्वाद इनके ऊपर जरूर जाती है। जो सर्विस जैसे अच्छी करते हैं तो उनकी बहुत अच्छी महिमा भी होती है। जो भी आएंगे बोलेंगे वाह, ऐसे भंडारी के ऊपर तो हम बलिहारी जावे। और बलिहारी जाना भी कोई ऊंचे के पास होता है। देखो तुम बच्चे बलिहारी जाते हो किसके ऊपर है? भंडारी भोली दादी की बात की, उसके ऊपर बलिहारी जाते हो या बाप के ऊपर बलिहारी जाते हो? कितना ऊंचे बाप है बलिहारी जाते हो तो फिर बाप से मिलता भी बहुत है। ये भी मेहनत है क्या? किस तरफ इशारा दिया होगा? किस तरह की मेहनत? कौन सी मेहनत? भारत को पवित्र बनाना, शांत बनाना, सुखी बनाना, ये तुम्हारी मेहनत है ना। जितनी याद में रहते हो इतनी शांति फैलाते हो, जितना पवित्र रहते हो इतना भारत को पवित्र बनाते हो। तुम पवित्र बनने के लिए, शांत रहने के लिए पुरुषार्थ करते हो। दुनिया वाले तो कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं है, है? दुनिया वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे नहीं करते दुनिया वाले कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं? हाँ, पुरुष माने आत्मा। आत्मा के लिए तो वो कुछ करते ही नहीं है। किसके लिए करते? पेट के लिए करते, देह के लिए करते, रथ के लिए करते। तो रथ के लिए काम करने वाला स्वार्थी हुआ, और आत्मा के लिए पुरुषार्थ करने वाला तो परमार्थी है। देखो कौन है इनको भुलाने में मेहनत लगती है। अशरीरी हो जावे, शरीर का भान मिटता जावे, ये भी तो यात्रा होती है ना। तो जितना अपन को आत्मा निश्चय कर बाप से योग रखता रहे इतना बहुत कल्याण है। राजयोग की पढ़ाई तो देखने में बहुत सिंपल आती है, بیرسٹری پڑھنے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، کتنا نیچے سے لے کر ایک دو تین چار میٹرک انٹرمیڈیٹ بی اے فلانا فلانا پاس کرتے کرتے جا کر کے پچھاڑی کو اونچا امتحان دینا پڑتا ہے، یہاں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. 1764 کی راتری کلاس کا دوسرا پیج، ایک ہی امتحان ہے، جو بھی آتے ہیں سو ایک ہی بات پڑھتے ہیں، چھوٹی موٹی موٹی چوپڑیاں نہیں پڑھتی پڑتی ہیں. یہاں تو پھٹ سے پڑھ لیتے ہیں. سو بھی باپ نے بڑا اچھا سمجھایا ہے کہ باپ کو پہچانا اور باپ کے بنے تو جیون مکتی ضرور ملے گی. کون کون سی دو شرطیں بتائی ہے؟ باپ کو پہچانا اور پہچان کر کے باپ کے بنے تو جیون مکتی ضرور ملے گی، کیونکہ جیون مکتی کی ہی راجدھانی استھاپن ہو رہی ہے اور باپ یہ راجدھانی استھاپن کر رہے ہیں. تو بڑی سمپل بھی ہے، بڑی سہج بھی ہے، اس میں ٹائم بھی کوئی بہت نہیں جاتا ہے، کیونکہ شریر نرواہ کے لیے سب کو ٹائم چاہیے، پرشوں کو بھی ٹائم چاہیے تو ماتاؤں کو بھی ٹائم چاہیے، گھر کی سنبھال کرنا، بال بچوں کو سنبھالنا، تو اس سمے میں اس طرف میں دھیان دیتے ہیں اور پڑھائی تو تھوڑی ہی رہتی ہے صبح اور شام. جو بھی پڑھائی ہے وہ سب پڑھائی میں اگر کوئی کمپلینٹ ہے تو کمپلینٹ سننے والا تو ایک ہی ہے، پرنتو کمپلینٹ کرنا مانا بھکتی کرنا. کیا کہا ہے؟ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے اس کو بھکتی کیوں کہا؟ ہم کسی کی کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے نزدیک ہے یا دور ہے؟ کیا کہیں گے؟ جس کی ہم کمپلینٹ کرتے ہیں وہ ہمارے سنسرگ سمپرک سمبندھ میں ہے یا نہیں ہے؟ اسے ثابت ہوتا ہے کہ ہم ابھی لکشمی نارائن کی طرح سمپن نہیں بنے ہیں. نہیں بنے ہیں تو ہم کو ایسی آتماؤں کے سنسرگ سمپرک سمبندھ میں آنا پڑتا ہے جن کی ڈھیر ساری کمپلینٹس نکلتی. تو مول کمی کس کی ہوئی؟ پور جنموں کا حساب کتاب کس کا بنا؟ ہمارا ہی بنا. ہمارے میں جب تک کچاپن ہے، جب تک پرشارتھ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، جب تک ہمارے کرم کوٹے جا رہے ہیں، खराब कर्मों पर हमने विजय नहीं पाई है, इससे साबित होता है कि कमी हमारी है। इसलिए ऐसी आत्माओं की संसर्ग संपर्क में आना पड़ता है। हम कंप्लीट बनेंगे अर्थात नई दुनिया की राजधानी में लक्ष्मी नारायण के संसर्ग संपर्क संबंध में कोई कंप्लेंट वाली आत्माएं आएंगी है, जिनकी कंप्लेंट की जा सके। तो कंप्लेंट करना माना ही भक्ति करना, क्योंकि कहते हैं भक्ति करते करते फिर तुम्हारा दुख का छुटकारा हो जाएगा। तो भक्ति करना भी बाप को एक कंप्लेंट करना है। भक्ति में भक्ति करते हैं दुखी होते हैं, भक्ति में दुखी कौन करते हैं है? भक्ति में जो दुखी होते हैं वो दुखी करने वाले कौन होते हैं? अरे भक्ति आई कहां से? भक्ति कहां से आती है? ज्ञान कहां से आता है? ज्ञान एक बाप से आता है और भक्ति रावण से आती है। तो ये रावण है जो हमें भक्ति में दुखी करते हैं। भक्ति को अच्छा तो समझते हैं परंतु वास्तव में है दुख की कंप्लेंट, कंप्लेंट के पिछाड़ी कंप्लेंट भक्ति में। फिर ये सुख की कंप्लेंट, दुख की कंप्लेंट सतयुग में तो होती नहीं है, ईश्वरी गोद में बहुत समय तो रह भी नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? है ईश्वरी गोद में लंबे समय तक क्यों नहीं रह सकते? आदि से अंत तक क्यों नहीं रह सकते है? नहीं, बोला है ब्रह्मा की भुजाएं होती है हजारों, लेकिन शंकर की हजार भुजाएं नहीं होती हैं। भुजाएं माने सहयोगी, तो शंकर के सदा काल के सहयोगी बने हैं कोई? बन सकते हैं है? सदा काल के सहयोगी बन सकते हैं? नहीं बन सकेंगे। ईश्वरी गोद में बहुत समय रह ही नहीं सकते हैं, अगर चाहें तो भी नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर की गोद तो सबसे उत्तम है ना। सतयुग में चाहें कि जास्ती रहें, 1250 वर्ष से जास्ती रहें तो रह नहीं सकते हैं। और दुख में कोई जास्ती रहना नहीं चाहेगा, सुख में सदा काल कोई रह नहीं सकते और दुख में कोई रहना चाहता नहीं। सुख में चाहे तो रहना मिल नहीं सकता सतयुग में। अच्छा, बाबा को घबराहट पैदा हो गई, बाजा बजाओ। आज सवेरे में ही क्लास बंद करना, रामचंद्र भी थका हुआ होगा जरूर है, भी क्यों लगा दिया है? यहां भी शब्द क्यों लगाया? जैसे हम थक जाते हैं ऐसे रामचंद्र भी थका हुआ जरूर होगा, सारा दिन मेहनत करते हैं, और वो बच्चा तो मक्खन निकालने की बहुत मेहनत करता है। कौन है? कौन? रामचंद्र। मक्खन काय में से निकलता है? दही में से। और दही से कनेक्टेड पार्ट किसका है? है ब्रह्मा बाबा का। जैसे दही जाम होता है वैसे बर्फ भी जाम होती है। पार्वती के बाप का नाम क्या? हिमवान। जैसे कहते हैं धनवान, वैसे हिमवान। हिम माने बर्फ वाला, हिमालय बर्फ का आलय, बर्फ का घर। कौन हुआ हिमालय? है बर्फ का घर कौन हुआ? कोई व्यक्ति है? जैसे नदियों के नाम है तो कोई व्यक्ति हुए, सागर है तो भी कोई व्यक्ति हुआ। ऐसे ही पहाड़ों में सबसे बड़ा पहाड़ जहां सदा बर्फ जमी रहती है, बर्फ की तरह दही भी जाम, बर्फ भी जाम। लिक्विड तो होता नहीं, तो ये हिमवान किसके लिए बोला? पार्वती के पिता के लिए बोला। तो जो पार्वती का पिता है वो कौन हुआ? है पार्वती कहो राधा कहो, राधा कौन से वंश की? चंद्रवंश की। तो चंद्रवंशियों का बाप कौन हुआ? चंद्रमा। और चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा बाबा का। तो बोला रामचंद्र भी थका हुआ होगा। किस बात में थक गया? सारा दिन मेहनत करता है, क्या करने के लिए? मक्खन निकालने। मक्खन कैसे निकाला जाता है? हैं? दही को बुझाना पड़ता है। गर मर गर मर, मेहनत तो लगती है ना। तो मक्खन निकालने की बहुत मेहनत करते हैं। कौन करते हैं? हैं? रामचंद्र जी। अच्छा, मक्खन निकालने की मेहनत करते हैं माने दही को बिलोते हैं, मथते हैं दही को मथानी से, क्योंकि मक्खन मुख में पड़ना है ना। कि नहीं पड़ना है? किसके मुख में मक्खन दिखाते हैं? है कृष्ण बच्चे के मुख में मक्खन दिखाते। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना मक्खन मुंह में जाएगा। सिर्फ याद करने से बच्चों को षष्ठी रूपी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। मक्खन को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाबा को नहीं समझ में आता है तो बोलते हैं अच्छा बाजा बजाओ। म्यूजिक बजा। माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड नाइट। आज का प्रातः क्लास है 18964 शुक्रवार रिकॉर्ड चला है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, दुनिया भी चकाचौंध में, आदमी गाफिल हो जाता है। बाबा ने पूछा किसने समझाया, है क्या समझाया, गाफिल माने गाफिल माने, अरे ये तो उर्दू का शब्द है, उर्दू तो हिंदुस्तान में खूब बोली जा रही है 400-500 साल से। जो काम करना है वो काम नहीं करना, और दूसरी बेकार की बातों में लग जाना, उसको कहते हैं गाफिल हो गए। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मना दी, घड़ियाल माने घड़ी। बाबा के इशारा कौन सी घड़ी से है, है? अरे अरे ये षष्ठी चक्र है, ये षष्ठी चक्र हमारी घड़ी है ना, ये हमको मुनादी कर रही है। क्या मुनादी कर रही है, अरे घड़ी की सुइयां क्या बता रही है, अब बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय रह गया है, फालतू की बातों में, फालतू के कामों में समय व्यर्थ बर्बाद न करो। जो बेहद की घड़ियाल की घड़ी है उसमें बाकी थोड़ा कुछ मिनट रहा है, घंटे गए अभी मिनट रहा है, समझो मिनट के भी थोड़े मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल बच्चे हैं वो जानते हैं, क्योंकि बच्चे तो नंबरवार है ना, ये तो बच्चे समझ सकते हैं, इनका दृष्टांत तो देते हैं कि बरोबर ये गुलाब के फूल हैं। तुम्हारा जो देवी देवता धर्म है वो जैसे सदा गुलाब का फूल, सदा शिव और सदा पाठ बजाने वाले ऑलराउंडर बच्चे, शिव के लिए क्या कहते हैं, है सदा शिव है या कभी कभी का शिव, कभी कभी का नहीं, अरे शिव संगम युग में ही तो आता है, 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार तो आता है, तो सदा शिव है या कभी कभी का शिव है, सदा शिव कैसे, अरे 5000 साल में सिर्फ संगम युग में, वो भी संगम युग बहुत छोटा, और युग तो 1250 वर्ष है, इस छोटे से युग में आता है फिर सदा शिव काय का है, नहीं आता बुद्धि में है, मुकर्रर रथ में जब आते हैं तो उनका विरोध है कि मैं आप समान बना करके जाता हूं, जिस रथ में आते हैं उसको क्या बना के जाते हैं, आप समान बना के जाते हैं, आप समान कैसे, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाला है, مقرر رتھ جس میں آتے ہیں وہ آپ سمان کیسے؟ بولا اس سرشتی پر سدا قائم کوئی چیز ہے نہیں، سدا قائم صرف ایک ہی شیو بابا ہے. سدا قائم کا مطلب کیا ہوا سرشتی میں؟ ایسے نہیں صرف سنگم یوگ میں سدا قائم، ست یوگ، تریتا، دواپر، کل یوگ، سنگم، چاروں پانچوں یوگ میں سدیو قائم ہے وہ پارٹ دھاری. اس لیے آل راؤنڈر بتایا، سدا سیو اور سدا پارٹ بجانے والا آل راؤنڈر. تو تم گلاب کے پھول ہو، کیونکہ یدے سبھی کے دھرم کے اوپر جاوے تو تم اونچے تے اونچے دھرم والے ہو، سدا گلاب ہو. پیچھے تمہارے جیسے سدا گلاب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. دوسرے دھرم والے پھر نمبر وار ہیں، کوئی چمپا ہے، کوئی چمیلی ہے، کوئی ٹانگر ہے، تو کوئی آک ہے. ان پھولوں میں بھی ایسے ہی پھول ہیں، کیونکہ بگیچہ تو ہوتا ہے نا. تو یہ دھرموں کا بھی جیسے بگیچہ ہے، یہ تو بچے جانتے ہیں کہ اونچے تھے اونچے دھرم تو ہے ہی دیوی دیوتا دھرم کا. مسلمان لوگ بھی کیا نام دیتے ہیں؟ اللہ نے کون سا دھرم استھاپن کیا؟ اللہ اول دین کی کہانی بنائی ہوئی ہے. اول دین مانے پہلے نمبر کا دھرم استھاپن کیا. تو دیکھو ان دھرموں میں گلاب کے چھاڑ کے پھول کو اول کہیں گے، پرنتو ابھی بیچارے مرجائے گئے ہیں، ابھی پھر سے ان میں ہونے ہیں. جب سیزن نہیں ہوتی ہے تو ششر ریتو میں ان پودوں میں روئے گلاب کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں مکھری بھی نہیں رہتی ہے، پھول بھی نہیں، کلی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. تم ہو تو گلاب کے جھاڑ کے، پرنتو سبھی ختم ہو گئے. جیسے سیزن ہی خلاص ہو گئی، ابھی جب میں آیا ہوا ہوں تو ان پودوں میں سے کوئی مکھری ہے، کوئی کچی ہے، کوئی پکی ہے. بابا نمونہ لے آئے ہیں. بھائی کہاں گیا؟ دیکھو نمبر وار ہے نا، ہیں تو گلاب کے نا. تم ہو برابر گلاب کے. یہ بند کلیاں کوئی کوئی مرجھا جاتی ہیں، کوئی کوئی کلیاں کھلتی ہی نہیں ہیں، کوئی تھوڑا کھلتی ہے تو نہ برابر. ہو بھی گلاب کے جھاڑ کے، کیونکہ دوسرے جھاڑوں کو ایسے نہیں کہیں گے. یہ سبھی سینسیبل دھرم والے جانتے ہیں کہ ان میں بھی کرسچین لوگ تو بہت اچھا جانتے ہیں، کیونکہ ان سے دیوی جھاڑ کا کنیکشن بہت ہے. تو ابھی باپ بچوں کو بیٹھ کر کے سمجھاتے ہیں بچے سستی نہیں کرو. دیوی دیوتا دھرم کے جھاڑ کا کنیکشن کرسچن سے کیوں بتایا؟ بہت ہے, کیونکہ ابھی انت میں ساری دنیا کی راجائی کن کے ہاتھ میں جاتی ہے؟ کون سے دھرم والوں کے ہاتھ میں چلی جاتی؟ ساری دنیا کے اوپر ابھی انت میں کون کنٹرول کرتے ہیں؟ ارے نہیں معلوم. ابھی کوئی دیش ہے جو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے؟ امریکہ. کون سے دھرم کا؟ کرسچن دھرم کا. اور تمہیں راجائی کس سے لینی ہے؟ کرسچن سے ہی تمہیں راجائی لینی ہے, کیونکہ یہ کرسچینس جب سے آئے تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ راجائے خلاص کر دیے. ہندوستان میں راجائیں مہاراجائیں کرسچینس سے آنے کے پہلے بہت ہوتے تھے نا, ان کی مہاراجائی چھین لی, ختم کر دی. بعد میں تو کانگریس گورنمنٹ نے کرسچن سے پربھاوت ہو کر کے ان کا ٹائٹل بھی چھین لیا, پریوی پرس دیتے تھے وہ بھی چھین لیا. تو یعنی کرسچنز نے جنہوں نے سب کچھ چھینا ہے اور سارے وشو کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں, اب ہمیں کس سے لینا ہے؟ انہیں کرسچن سے اب ہماری ریٹرن سروس ہونی ہے. تو بتایا ان کرسچن سے دیوی جھاڑ کا بہت کنیکشن ہے, اس لیے ابھی سستی چھوڑو. ابھی اگر کلیاں کی کلیاں ہیں تو سمجھتے ہو کہ پھول کے پھول رہ جائیں گے اور پچھاڑی میں آدھا کے آدھا ہی رہ جائیں گے, کلی تک ہی رہ جائیں گے, کھلیں گے بھی نہیں. تو سمجھیں گے نا یہ کہاں چلے گئے, کہاں چلے جائیں گے, ان کا کیا پد ہوگا. دیکھو بابا یہ سب طرح کے پھول لے آئے ہیں, ان میں یہ روح گلاب کے ہیں خاص, اور ہیں بھی ایک ہی جھاڑ کے. باپ سمجھاتے ہیں بچے سمے باقی تھوڑا ہے, یہ جو گھڑی بنائی ہوئی ہے اس میں واستو میں کانٹے کا پھرائے تو نہیں سکتے, کہ کانٹے کو جلدی آگے کر دیں تو سمے جلدی چلا جائے گا. ہاں اگر یکتی سے کوئی رکھے تو تھوڑا تھوڑا ہم پھر آتے رہیں, نشان چھوڑتے رہیں کہ یہاں سے کانٹا شروع ہوا ہے, یہاں کا کانٹا یہاں تک آ گیا ہے, کیونکہ تم جانتے ہو اس کانٹے کو کتنا برس ہو گیا جو پھرنا شروع ہوا ہے, نل سے نکالا ہے. ابھی آ کر کے 12 بجے کے نزدیک پہنچا ہے. کیا کب نکالا نیل سے ہے؟ ارے کانٹا گھومتے گھومتے 12 تک پہنچتا ہے رات کو, تو گھڑی میں کتنے آتا ہے؟ گھڑی جو نمبر والی گھڑی ہوتی ہے انکوں والی, وہ کیا انک بتاتی ہے؟ ہے अरे रात को 12 बजते हैं तो रात के 12 बजे जब घड़ी घूमते घूमते 12 तक पहुंचती है तो घड़ी क्या अंक दिखाती है? है? 0 0 0 निल हो गया ना, कब की बात है? है? कब की बात है? अरे ये निल पर हमारी, ये जो हमारी बेहद की घड़ी है वो निल पर कब पहुंची? अरे कौन से सन में पहुंची? अरे है? 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 ओ टाइम बताओ। अरे गाते तो बहुत है, कितना गीत गाते रहे, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अधेर विनाश, तो कब की बात है? हाँ, 76 में अंधेरा था ना, नील हो गया ना, नील के बाद नील से बाहर निकला, अभी आ करके 12 बजे के नजदीक पहुंच गया, ये तो जानते हो ना। यूं धर्म भी नील से निकला है, कांटा सतयुग से लेकर यहां तक चला आया, अभी जब से बाबा आए हुए हैं फिर उस टाइम को गिनना होता है। बाप खुद ही बच्चों को कहते हैं, बच्चे अभी टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपने बाप को अच्छी तरह से याद करते रहो, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे इतने इतने विकर्म विनाश होते जाएंगे। विकर्म कुछ न कुछ सबके होते रहते हैं जरूर, अभी विकर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वि माने विपरीत, कर्म माने कर्म। श्रीमत में जो कर्म बताए हैं, श्रीमत के विपरीत कर्म अभी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं जरूर। 18964 की वाणी का दूसरा पेज। ऐसे अपन को कोई मत समझे, इतना अहंकारी कोई मत बने कि हमारा कोई विकर्म नहीं बनता है। नहीं, अनेक प्रकार से विकर्म बनते हैं, कोई के गुप्त विकर्म भी बहुत बनते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे इन विकर्मों से संभाल करते रहो और बाप को खूब अच्छी तरह से याद करते रहो। घड़ी का टाइम दिखाई देता है तुम बच्चों को, दुनिया को तो पता भी नहीं है, क्योंकि कोई बोलते हैं ना कलयुग अभी बच्चा है, है? और हमारी घड़ी क्या बता रही है? हमको बाबा ने जो घड़ी का ज्ञान दिया है, बेहद की घड़ी का, कौन सा टाइम बता रही है? अभी कलयुग का अंत हुआ कि हुआ, सतयुग आया कि आया? वो कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, तो इसको कहेंगे घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। तो अभी तुम बच्चों को मुर्दों को जगाना है, समझा? गाते भी हैं बरोबर, सवेरे में ही याद करना चाहिए, जिन सोया तिन खोया, मन सोना तो है सबको, ऐसे नहीं कि कोई सोने बगैर रह सकते हैं, परंतु जो समय है याद करने का या भक्ति मार्ग का, वो सो करके खो नहीं। नहीं तो फिर मुर्दे के मुर्दे, ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। इनसे इतना तक भी कोई नहीं आते हैं, और फिर कोई तो यहां तक आकर के भी तूफान जो लगते हैं तो खेल ही खलास। यहां तक भी आकर के खेल खलास हो जाता है। तूफान में बहुत ही अच्छे अच्छे फूल बेचारे मुरझा कर गिर गए, तो जब फूल गिर सकते हैं तो कलियों को मुरझाने में तो देरी क्या लगेगी, वो भी गिर जाएंगी, फिर कहां चले जाते हैं, फिर वो कांटे के कांटे रह जाते हैं। कौन रह जाते हैं, कौन से झाड़ में, गुलाब के झाड़ में फूलों के साथ साथ कांटे भी तो होते हैं, कलियां और फूल सारे जड़ गए तो क्या रह जाते, कांटे के कांटों की दुनिया रह जाती है। हैं जरूर यहां के फूल, बाबा कहते हैं देवी घर में तो जरूर आएंगे, प्रजा में भी आएंगे, प्रजा में भी नौकरी करने वाले भी आएंगे, राजाई में भी नौकर होते हैं, साहूकारों के भी नौकर होते हैं, और प्रजा वर्ग वालों के भी नौकर होते हैं, सबसे कम पद भी पाएंगे, परंतु आएंगे तो जरूर, क्योंकि हैं ही तुम गुलाब के झाड़ के, तो उसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो सतयुग में तो आ ही जाएंगे, फिर भी हम स्वर्ग में तो आ जाएंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि मनुष्य तो गाते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवॉर्ड, वो तो बेचारे सिर्फ नाम मात्र बैकुंठवासी हुए। बैकुंठ में क्या है, क्या है, कैसे राज्य होता है, वो प्रारब्ध हरेक कैसे बनाते हैं। स्वर्ग में कोई महाराजा महारानी है, कोई राजा रानी है, कोई प्रजा वाले है, क्यों, इसका भी तो कोई कारण होगा ना, अलग अलग पद कैसे बन गए। अभी तुम बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हो कि जितना जितना जो बाप का बिलवर्ड मोस्ट सर्विसेबल मोस्ट बच्चा होगा उसको ऐसे कहेंगे सर्विसेबल मोस्ट बिलवर्ड मोस्ट, ये तो एक कॉमन बात है। कोई भी बाप से जाकर के पूछो, बच्चे अगर सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं, क्योंकि इसमें ईमानदारी भी बहुत चाहिए, माया बेईमान बनाई देती है, बात मत पूछो, ऐसा चक्करी में लाती है जैसे चूहा काटता है ना, फिर कुछ भी पता नहीं पड़ता कि हम बेईमानी कर रहे हैं। ये माया रूपी बिल्ली कहो, चूहा कहो, जो भी कहो, उनको पता नहीं पड़े कि हमारे से कोई बड़ी भारी गफलत हो रही है। इसलिए बाप कहते रहते हैं कि जो करता है उनको अपने करने का फल जरूर पाना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं बनाना चाहिए जिससे सजा खाने के लायक बने, क्योंकि ऐसे कोई मत समझे कि यहां विकर्म की सजा नहीं पाएंगे, नहीं, कई विकर्मों की यहां भी सजा पाए लेते हैं। कहीं चलते चलते सभी गर्भ में थोड़े ही सजा पाते हैं, किसको बीमारी हो जाती है। फिर उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे तो सजा हो गई ना। कोई गर्भ जेल में चले जाते हैं, किन की आंख निकल जाती है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, गिर पड़ते हैं तो लंगड़े हो जाते हैं, समझो सीढ़ियों पे चढ़ता है, चूक गया पांव, सीढ़ी से धाम से नीचे गिरा, टूट गई टांग, तो क्या हो गया, लंगड़ा हो गया। चलते चलते गिर पड़ते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, कैसे, क्या मतलब हुआ है? जैसे कोई कुमार होते हैं, बहुत अच्छी टैप में सर्विस करते हैं, फिर सर्विस करते करते किसी से लगाव लग जाता है, या शादी करके बैठ जाते हैं तो टांग टूट गई ना कि नहीं टूट गई है, फिर बाप उनका सहयोगी बनेगा कि जिसके साथ शादी की है वो उनकी सहयोगी बनेगी है, कौन बन गया जीवन साथी, कौन बना है, टांग तोड़ने वाला बना या दौड़ में तीखा ले जाने वाला बना। गिर पड़ते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, लूले हो जाते हैं। लूले किसे कहा जाता है? लंगड़े माने जिसकी टांग टूट जाए, लूले माने जिनकी बांह टूट जाए। कोई गिर पड़ते हैं तो बांह भी तो टूट सकती है ना, बांह टूटना माने सहयोगी मददगार, कोई जो अच्छा ईश्वरीय सेवा में मददगार होता है वो टूट जाता है, तो लूले हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, मान लो गीता पाठशाला चल रही है अच्छी खासी, टॉप मोस्ट गीता पाठशाला चल रही है, है, और पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, तो पत्नी सहयोगी थी ना, भुजा थी ना, और टूट गई तो कैसे हो गए, है, लूले हो गए। इतनी तीव्रता से सेवा तो नहीं कर सकेंगे उतनी आत्माओं की, तो यहां भी ऐसे हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, ये भी कर्म भोग है, यहां भी कर्म भोग होता है तो गर्भ जेल में भी कर्म भोग होता है। इस कर्म भोग से बड़ी खबरदारी चाहिए, इसलिए बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे बड़ी संभाल करते चलना, ये माया बड़ी शैतान है। ओम शांति।